देखते देखते एक महीना बीत चुका था। अगस्त का महीना शुरू हो चुका था। बीते कुछ दिनों से दोनों घरों में एक बार फिर तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। कुछ दिन पहले ही रूपाली जी का फोन आया था। आहना से कुछ बात भी हुई और साथ ही अंगूठी का नाप भी ले लिया गया, क्योंकि सगाई के लिए अंगूठी बनवानी थी। बातों से वो थोड़ी सख्त मिजाज लगीं, पर व्यवहार ठीक था। एक तरफ कानपुर आने और आहना के रोके सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं, तो दूसरी तरफ शुक्ला निवास में भी सब तैयारियों में मशगूल थे। फंक्शन छोटे पैमाने पर सिर्फ परिवार और रिश्तेदारों के बीच होना था, पर आस पड़ोस वालों को खाने पर बुलाया गया था, जिसका इंतजाम बाहर गली में किया गया था। शुभ दिन था। जितने आशीर्वाद मिले उतना कम, और खुशियां जितनी बांटी गईं उतनी बढ़ती गईं। विचार तो था कि सगाई धूमधाम से हो, पर लड़कों वालों ने छोटे पैमाने पर ही करने की बात कही, जिसे जितेंद्र जी ने सर झुकाकर स्वीकार कर लिया था। रूपाली जी ने अपने रुतबे के हिसाब से सब तैयारियां कर ली थीं। आज सगाई थी और मुहूर्त शाम का था। परिवार और मुख्य रिश्तेदारों, दोस्तों संग एक मिनी बस और कार में वो सभी शगुन के सब सामान संग कानपुर के लिए सुबह ही रवाना हो चुके थे। अक्षय का दिल आज कुछ अलग अंदाज में धड़क रहा था। आज आहना से उसकी दूसरी मुलाकात होनी थी, और आज वो वाकई में आहना से जुड़ने वाला था। सगाई के बाद ऑफिशियली आहना उससे जुड़ जाएंगी, उसका अधिकार होगा उस पर, शायद उनके बीच बातें भी शुरू हो जाएंगी। आखिर सगाई के बाद उसे इजाज़त तो मिल ही जाएगी। इस दिन का इंतजार उसने बीते एक महीने से बड़ी ही बेसब्री से किया था। ये तो वही जानता था कि किस कदर वो बेचैन था उससे मिलने और बात करने के लिए। रातें उसकी तस्वीर को निहारते हुए कटती थीं, और जाने कितनी ही बार मन ही मन उससे हुई पिछली मुलाकात को दोहरा चुका था। वो मुलाकात जहन में उस कदर ताज़ा थी कि ऐसा लगता था मानो कल ही की बात थी जब वो आहना को देखने आया था। सबके सामने तो वो संजीदा और निर्मोही बना रहता था, पर सारे जज्बात तो तन्हाई में जाहिर होते थे। बेताबियां और बेचैनियां तो इधर भी बिखरी थीं, जज्बातों में रवानियां इधर भी उठती थीं। वैसे तो उसे अकेले रहने का मौका नहीं मिलता था। स्कूल, घर और सगाई की तैयारियां, शॉपिंग में वक्त ही कहाँ मिल रहा था उसे। पर जब रात को अंतरा के सोने के बाद वो तन्हा होती थी, तो खाली बैठे उसकी तस्वीर निहारती, तिलक की वीडियो में उसकी कही बातें सुनकर उस पर वारी वारी जाती। उसकी निगाहों की तपिश को खुद पर महसूस करते हुए वो सिमट जाती, उसकी बातें याद करके खुद में ही मुस्कुराती। उसके ख्याल मात्र से उसका रंग निखर जाता था, धड़कने बेतरतीब हो उठती थीं। खूबसूरत सा एहसास था जब वो पास ना होकर भी उसके दिल के बेहद पास था, और शायद उतना ही खास भी। दोनों में अंतर बस इतना था कि एक तरफ अक्षय उसे दोबारा मिलने को बेकरार था, जबकि आहना उसे फिर से मिलने के ख्याल से ही अजीब से एहसासों से घिर जाती थी। दब्बू किस्म की डरपोक लड़की नहीं थी वो, बेझिझक अपनी बात सामने रखना जानती थी, कॉन्फिडेंस की भी कोई कमी नहीं थी। पर जाने अक्षय के वजूद में ऐसा क्या था कि उसके सामने लब खुलने से कतराती थी, निगाहें तक मिलाने से घबराती थी। दिल अलग बेचैन होता और बदन खुद में सिमट जाता था, जिस अंदाज से वो देखता आहना को शर्माने पर मजबूर कर देता था, या शायद ये उससे जुड़े एहसासों का असर था। खैर, कितना ही कतराए पर आज उसका उससे सामना होना था एक बार फिर। सुबह से घर में खूब चहल पहल थी, रिश्तेदारों से घर भरा था। द्रीशान सगाई की तैयारियों में लगा था। जितेंद्र जी मेहमानों के ठहरने और बैठने का, खाने पीने का इंतजाम देख रहे थे। पल्लवी के पिता और भाई भी साथ लगे थे, उनके खुद के भाई और भतीजे भी थे। पल्लवी और भाभी जयंती जी के कामों में मदद कर रही थी। अंतरा आहाना के साथ थी। अभी अभी उसके हाथों में मेहंदी लगाकर वो फ्री हुई थी, और अब छत पर पहुंच गई थी सुहावनी मौसम का लुत्फ उठाने। साथ ही अपने घर की चहल पहल भी देख रही थी। कुछ देर बाद वो फिर आहाना के पास चली गई। दोपहर और शाम के बीच का वक्त था जब अचानक ही चहल पहल उफान पर पहुंची। बाहर से आती आवाजों ने कमरे में बैठी अंतरा और आहाना तक लड़के वालों के आने की खबर पहुंचा दी थी। नीचे सब लोग उनके स्वागत में जुटे थे। बैठने का इंतजाम आंगन में किया गया था। डाइनिंग टेबल वगैरह हटाकर पूरे ड्राइंग रूम को खाली कर दिया गया था। सीढ़ियों की तरफ सोफा लगा था, और उसके सामने काफी सारी चेयर्स लगी थी। सीलिंग फैन के साथ टेबल फैन और कूलर भी लगे थे, जिससे जरा भी गर्मी या उमस का एहसास नहीं हो रहा था। मेहमानों का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समधी सब आपस में मिले, फिर सफर के थके हारे सब हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुए। सबको वहीं ड्राइंग रूम में बिठाया गया। पानी, कोल्ड ड्रिंक के साथ स्नैक्स भी सर्व किए जाने लगे। पल्लवी और भाभी के साथ घर की औरतें इन्हीं कामों में लगी थीं, जबकि आहाना की कजिन सिस्टर्स ने अपने होने वाले जीजाजी को घेर लिया था। अक्षय तो इतनी लड़कियों को देखकर ही कुछ नर्वस हो गया, आदत जो नहीं थी इन सब की, और ये अभी अनजान थी उसके लिए। पर उसके बगल में बैठा अन्वय उसकी जगह उन लड़कियों के हर सवाल का जवाब देता, उनके मजाक में उन्हें ही उलझा देता। इस दौरान उसकी नजरें चारों ओर भटकी थीं, पर जिसकी उसे तलाश थी वो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। यहाँ नीचे सब लड़के वालों की आवभगत में लगे थे, बातें शुरू हो रही थीं, तो ऊपर अंतरा आहाना को जल्दी जल्दी से तैयार करने में लगी थी। उसे तैयार करके उसे भी तो नीचे जाकर अपने जीजू से मिलना था, उनकी टांग खींचनी थी। जल्दी ही अंतरा ने आहाना को तैयार कर दिया, फिर उसे अपने सामने खड़ा किया और गहरी निगाहों से ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगी। खुद में सिमटी हुई खड़ी आहाना कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रही थी। वो आंखें बड़ी बड़ी करके घबराई हुई सी उसे देखने लगी। अच्छे नहीं लग रहे क्या? बस अच्छे, अंतरा ने नाराजगी से उसे देखा, फिर अगले ही पल बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। अम्मा, भौकाल लग रही हो, सच बता रहे हैं? आज जीजू नजरें ना हटा सकेंगे। आज जो आपको देखकर उनकी दिल की धड़कनें ना थम गईं, तो हमारा नाम द ग्रेट अंतरा शुक्ला नहीं। उसने गर्व से अपनी तारीफ करते हुए अपने इमेजिनरी कॉलर को बड़ी ही अदा से झाड़ा, जबकि उसकी बात सुनकर आहाना का गोरा मुखड़ा शर्म से कश्मीरी सेब बन गया और पलकें बोझिल होकर झुक गईं। अंतरा ने दो उंगलियों को मुंह में डालते हुए जोर की सीटी बजाई। आय हाय, का बात जीजी, तुम जो जीजू के जिक्र से ही शर्म से लाल गुलाबी हुई जा रही हो। तुम्हारा तो जीजू के नाम से ही रंग निखर गया। जब सामने आएंगी तब का करोगी जिज्जी? जिज्जी, उसने जरा लंबा खींचते हुए उसे छेड़ा और उसकी शरारत समझते हुए आहाना ने अपनी शर्म छुपाते हुए झूठा गुस्सा दिखाया और आंखें छोटी छोटी किए उसे घूरने लगी। उसके घूरते हुए अंतरा एकदम शांत हो गई और संजीदगी से बोली, चलिए नहीं छेड़ते आपको, जरा ये तो बताओ जीजू पसंद है आपको, तुम्हें क्या लगता है? आहाना ने उसके सवाल के बदले सवाल किया और लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए उसे देखने लगी। अंतरा ने चिन पर दो उंगली रखकर ऐसा दिखाया जैसे गहरी गंभीर सोच में हो, फिर निगाहें आहाना की ओर घुमाई। चंचल मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोली, हमें तो लगता है हमारी जीजी अभी से पराई हो गई हैं। जीजू का रंग चढ़ने लगा है उन पर। क्यों, सही कहा ना हमने, चढ़ने लगा है ना उनका रंग? आहाना कुछ कह ना सकी, पर अक्षय के जिक्र मात्र से उसका चेहरा ताजे गुलाब सा खेल उठा था, जिसने बिन कुछ कहे उसके दिल में बसे जज्बातों की चुगली कर दी थी। जीजी, हम बहुत खुश हैं आपके लिए, जीजू बहुत अच्छे हैं, अंतरा ने उसके गले लगते हुए ये कहा था। आहाना ने भी उसे गले से लगा लिया और अक्षय के बारे में सोचते हुए पलकें झुकाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद अंतरा उससे अलग हुई और चहकते हुए बोली, हम अभी आते हैं, जीजू को देखकर। आहाना ने सिर हिला दिया तो अंतरा तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरती वो नीचे पहुंची और अभी अक्षय की ओर बढ़ ही रही थी कि सामने ही जयंती जी मिल गईं। सामने खड़ी अंतरा को देखकर उनके चेहरे के भाव बिगड़ गए।
अंतरा बिटिया, तुम अब तक तैयार काहे ना हुई? माँ जीजी को तैयार कर रही थी, अभी जाकर तैयार हो जाएंगे, पहले जीजू से मिल ले, अंतरा ने तपाक से जवाब दिया और जयंती जी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अक्षय की ओर बढ़ गई। क्या कर रही हो तुम सबकी सब यहाँ? अपनी सालियों से घिरे अक्षय के कानों में अचानक ही एक जानी पहचानी सी कर्कश आवाज पड़ी और उसके चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। जबकि उसके सामने खड़ी लड़कियां पीछे को पलटी तो उसके ठीक पीछे अंतरा खड़ी थी और कमर पर हाथ धरे गुस्से से उन्हें घूर रही थी। उसने आंखों से उन्हें कुछ इशारा किया और सबकी सब मुंह बनाती वहां से निकल गई। सबके जाने के बाद अक्षय के साथ साथ अन्वय की नज़र भी अंतरा पर पड़ी। आज फिर वो शॉर्ट कुर्ता और जीन्स पहने उनके सामने खड़ी थी, बालों को समेटकर जुड़े में बांधा हुआ था जिससे निकलती लटे उसके चेहरे और गर्दन पर बेतरतीब से बिखरी हुई थीं। फिर भी बड़ी प्यारी लग रही थी वो। उस पर नज़र पड़ते ही अन्वय के लब मुस्कुराए थे और चेहरे पर सुकून के भाव उभरे। नज़रों की तलाश इस चेहरे पर आकर खत्म हुई। अन्वय की नज़रें जहाँ अंतरा पर टिकी थीं वहीं अंतरा ने उसे फुल इग्नोर किया था और अक्षय से मुखातिब हुई। हाय जीजू। हेलो, अक्षय हल्के से मुस्कुराया था जिस पर अंतरा भी मुस्कुरा दी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। एकदम झक्कास, अंतरा खुलकर मुस्कुराई थी और बड़ी ही अदा से जवाब दिया था। अक्षय के लब खुलकर मुस्कुराए थे, वहीं अंतरा ने अब चील सी तेज नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया था। लाइट पिंक शर्ट पर नेवी ब्लू कोट और पैंट कैरी किया था, गले में ब्राउन टाई लटक रही थी, बालों को जेल वैक्स लगाकर बढ़िया से सेट किया हुआ था, दाएं हाथ में घड़ी सजी थी और पैरों में ब्राउन लोफर्स। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था और आज तो बेहद दिलफरेब लग रहा था। अंतरा उसे जांचती नजरों से देखते हुए मुस्कुराई। वैसे आज जंच खूब रहे हैं आप, पर हमारी जीजी के आगे पानी कम चाय लगेंगे, अंत में उसका बड़ा ही दुखी चेहरा बनाते हुए अपनी निराशा जताई। अक्षय भला क्या कहता, वो तो बस मुस्कुरा कर रह गया, पर अन्वय जो तब से चुप साधे बैठा था मौका मिलते ही बोल पड़ा, ऐसी बात है, फिर तो हम भी ये देखना चाहेंगे, चलिए जरा भाभी से तो मिलवा दीजिए हमें। अन्वय का बीच में बोलना अंतरा को जरा भी पसंद नहीं आया। उसने भौं से कोड़कर उसे घूरा और बेरुखी से बोली, अभी वो हमारी जीजी है, आपकी भाभी नहीं बनी है। उसके तीखे तेवर देखकर अन्वय ने दिल जलाने वाली मुस्कान पास की। अच्छा, तो बुरा क्यों मानती है, अपनी जीजी से ही मिलवा दीजिए, हमारी भाभी भी तो वहीं बनेंगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अंतरा सुलग गई। जी चाहा एक घूसों में मुंह तोड़ दे उसका, पर अपने गुस्से में जब्त कर गई और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, इतनी बेसब्री किस बात की है आपको, कुछ देर में नीचे आएंगी तब मिल लीजिएगा, पर हमें तो अभी ही मिलना है, आप नहीं मिलवाएंगी तो हम सिफारिश कहीं और लगाएंगे। अन्वय ने शैतानी मुस्कान लबों पर सजाते हुए उसे देखा। अंतरा उसकी उस रहस्यमयी शैतानी मुस्कान की वजह और उसके इरादे समझ पाती उससे पहले ही अन्वय ने सर घुमाया और कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी जयंती जी को आवाज़ लगा दी। आंटी, आवाज़ सुनकर जयंती जी ने तुरंत सर घुमाकर उसे देखा। जी बेटा, कुछ चाहिए आपको? इधर तो आइए फिर बताते हैं। अन्वय के बुलाने पर वो उसके पास चली आई। अक्षय खामोश बैठा अपने भाई की हरकतें देखते हुए उसके इरादों को समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि अंतरा उसके जयंती जी को आवाज़ लगाने से पहले तो चौंक गई, फिर आंखें छोटी छोटी किए गुस्से से उसे घूरने लगी। बोलिए बेटा, क्या हुआ, कोई परेशानी है, कुछ चाहिए आपको?
जयंती जी ने उसके पास आते हुए सवाल किए। जवाब में अन्वय ने तिरछी नजरों से अंतरा को देखा, फिर मासूम सी सूरत बनाकर बोला, आंटी मैं आपका घर देखना चाहता था और भाभी से भी मिलना चाह रहा था, पर अंतरा जी इनकार कर रही हैं। अंतरा ने मन ही मन कम से कम भी तो 100 गालियां दी होंगी उसे। उसी के सामने उसी की माँ को कैसे उसकी झूठी सच्ची शिकायत लगा रहा है और कितना मासूम बन रहा है, एक नंबर का मक्कार आदमी है। अंतरा का गुस्सा, उसकी खीज उसके चेहरे पर झलक रही थी, जिसे देखकर जयंती जी ने नाराजगी से उसे फटकार लगाई। अंतरा बुरी बात बेटा, तुम्हारी जीजी का देवर है, कुछ तो ख्याल करो। अंतरा को डांट पड़ते देखकर अन्वय ने तुरंत ही उन्हें रोका, अरे आंटी आप उन्हें क्यों डांटने लगी, वो तो कह रही थी कि आपसे पूछूं तो ले जाएंगी, बस इसलिए आपसे पूछा। अगर आपकी इजाजत हो तो आपका घर देख लूं और साथ ही भाभी से भी मिल लूंगा। एक बार फिर जयंती जी के सामने कितना अच्छा सच्चा और शरीफ बन गया था। गुस्से से अंतरा का खून फूंक गया। वहीं जयंती जी ने उसकी बात सुनकर बिना एक पल गवाए तुरंत ही इजाजत दे दी, आपका ही घर है बेटा, बिल्कुल जाइए। उसके बाद उन्होंने अंतरा का रुख किया और बड़ी ही मोहब्बत से बोली, अंतरा जाओ बेटा, अन्वय को घर दिखा दो और आहाना से भी मिलवा देना। अपनी माँ की बात सुनकर अंतरा ने तुनकते हुए कहा, माँ मैं क्यों जाऊँ, मैं क्या टूर गाइड लगी हूँ, जिसको घूमने का शौक चढ़ाया खुद घूमे। अंतरा, जयंती जी ने गुस्से से उसे पुकारा था और अंतरा मुंह बनाए चुप्पी साध गई थी, पर उसने आखिरी कोशिश जारी रखी, माँ मुझे अभी तैयार भी होना है, खुद तो बन सवर कर ऐसे आए हैं जैसे इनकी ही सगाई हो, क्या मैं अपनी जीजी की सगाई में ऐसे शामिल होंगी। उदास और दुखी चेहरा बनाते हुए अंतरा ने शिकायत की और तिरछी नजरों से अन्वय को घूरना ना भूली।